गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पवित्र बाइबल में जो 6 दिन में सृष्टि रचने वाला भगवान का आदेश है कि मांस नहीं खाना, केवल फलदार पौधे, बीजदार पौधे, फलदार वृक्ष, ये तुम्हारे लिए, नथिंग एल्स। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश है तो अल्लाह का नहीं, वो किसी और फरिश्ता का, वो हमें मान्य नहीं है। वो हमारे को, यदि हम संविधान को तोड़ के, अब पहले ये क्लियर करते हैं कि वो, उसके बाद ये उदाहरण आपको देंगे। अब 58 आपने सुन लिया है। अब जिंदा महात्मा परमात्मा मिले थे कबीर जी उनको आकर के, तो ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि ए पैगंबर, ए मोहम्मद हजरत, उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में परमात्मा आए थे, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में, जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह काफी खबरदार है। अब इन्होंने यहां इस 58 में ये खबीरा शब्द है, खबीरा कहो चाहे खबीरन कहो, कबीर कहो, ये शब्द इसका अर्थ वो कबीर साहब की तरफ ही है। बोलने में ही अंतर हो जाता है, जैसे हम कुछ अपने लैंग्वेज के आधार पर, तो इन्होंने काफी खबीरा का अर्थ काफी कर दिया, काफी खबरदार। वह अपने बंदों के गुनाहों से वो कबीर नामक परमात्मा खबरदार है। आगे देखो 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह बड़ा। यहां कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, हम कह दें वो अल्लाह कबीर रहमान है, जो उस तो उसकी खबर किसी बा खबर इलम वाले से पूछ देखो। अपुनात्मा दो बात सिद्ध होगी, पवित्र बाइबल वाला ही ज्ञान मेल खा रहा है, और इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जो कबीर है उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तकत पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बा खबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह उस पूर्ण परमात्मा के विषय में अनभिज्ञ है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म, ये कुरान शरीफ का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है और गीता जी का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो, उनसे वही तुम्हें बताएंगे। अब यहां एक प्रश्न आ गया कि जैसे कुरान शरीफ में अभी आपको परमात्मा की वाणी में बताया कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180 को सोगन जिन ही कर चलाया, उन्होंने मांस नहीं खाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने रोजा भी, रोजे रखने को भी कहा था और बंग देने को भी ऊंची आवाज में कहा है, और नमाज भी कही थी, पांच वक्त की नमाज करो, लेकिन बिस्मिल की बात हजरत मोहम्मद ने नहीं कही। अब जैसे कुरान शरीफ में और पवित्र बाइबल में छह दिन में सृष्टि थी, सातवें दिन तख्त पर जा बैठा वो भगवान, वो तो है पूर्ण परमात्मा, ओवरऑल कंट्रोल। और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान समझाता है, और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं। अभी ऐसा प्रमाण किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा। वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है, जन्म नहीं लेता किसी से। अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, ये तो जन्म लिया मां से, वो कभी वो सह शरीर आता सह शरीर जाता है, ये उसका पहचान। अब आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, अपना तत्व ज्ञान समझाता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9 और 10। अब 9 मंडल को देखेंगे, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इन्होंने गलत लिखा है, महर्षिदानंद सरस्वती कृत नहीं, इसके अनुवादकर्ता दयानंद नहीं है। ये कहां से छपा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पड़ोती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखिए सूक्त नंबर, मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 20 में और बहुत स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में, अब यहां देखो 96 के श्लोक नंबर 18 को लेते हैं। वैसे तो काफी अलग विवरण भी है कि वो कबीर परमात्मा ज्ञान देता है, कबीर वाणी है। अब हम 18 से लेते हैं कि वह सोम यानी अमर परमात्मा, सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा, सोम रूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम, ये देवयान पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। जो ज्ञान योगी इन्होंने अपनी तरफ से घुसेट दिया, इसमें मूल संस्कृत में ज्ञान योगी कहीं नहीं है। ऋषि मना ये ऋषिकर सवरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषी महिष शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप माने होता गुम्बज में, वो परमात्मा गुम्बज में और तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और अनुराजती प्रकाश करने वाला, अनुराजती माने स्व प्रकाशित है, और स्तूप माने ये स्तूप नहीं स्तूप है, स्तूप स्तूप कहो चाहे स्तूप कहो, तो स्तूप का अर्थ है वो गुम्बज में विराजमान है, उस सफेद गुम्बज में, स्तूप माने गुम्बज में। तो कहने का भाव ये है कि वो परमा, आगे देखो इसके 20 श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का आपने 18 सुना, ये 19 है। इसमें चौथा धाम में भी बताया कि तुरियम धाम चौथे धाम में भी रहता है, वो अनामी लोक में, ये 19 में। अब 20 में कमाल किया है, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े भक्तों के समुदाय का वो गुरु रूप होता है, उस इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी श्लोक में कोशों में कोष को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे कि मरिय, मरिय माने मनुष्य, मनुष्य शुभ्र शरीर धारण करता हुआ, यानी परमात्मा अन्य शरीर रूप धारण करके शरीर बनाकर अलका तेज पुंज का, और अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, धनाना माने भक्ति के धनों धनी लोगों को आकर मिलता है, इसका सीधा अर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य जैसे भगवान ये देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर एक मंडल, ये दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन मैदान नई दिल्ली के। और ये प्रथम मंडल जो है इसका पूरा भाष्य जो है महर्षि दयानंद ने किया है हिंदी भाष्य, मंडल नंबर एक सूक्त नंबर 31 के और मंत्र नंबर 17 में आप देखेंगे। सूक्त नंबर मंडल नंबर एक सूक्त 31 का मंत्र 17 यहां देखिएगा, मनुष्यवत अग्नि मनुष्यवद ये तय बन जाता संधि छेद करने मनुष्य, ये इन्होंने संधि छेद करके ये देखो मनुष्यवत, मनुष्यवत माने मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसे, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि अग्नि माने परमेश्वर, यहां इन्होंने अपने या बदल दिया सिद्धांत को, क्योंकि ये परमात्मा को साकार नहीं मानना चाहता था ये दयानंद, इसने अपनी अज्ञान थ्योरी बना करके शब्दों के अर्थों को घुमा दिया। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है ये दास बताएगा। ये देखिएगा ये वही है, सबसे पहले यही देखते हैं ये ऋग्वेद मंडल नंबर एक और सूक्त नंबर 31 का मंत्र 17, ये सारा संस्कृत है, इसका संधि छेद यहां पर मनुष्यवत अग्नि अंगीर अंगीरस्वत अंगीर है यातिवत सदने पूर्वत सूचे अच यहा वहा दैव्यम जनम आसाध्य वहीर यच तप्रियतम। हे मनुष्यवत, हे मनुष्य के समान देहधारी अग्नि माने परमेश्वर, जैसे कि आप मनुष्य के समान मनुष्यवत, ये अंगीरसवत यानी अन्य तेजो में शरीर धारण करके मनुष्य के समान तेजो में शरीर के समान देहधारी हो, अलका तेजो में शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो, पूर्ववत पहले की तरह, जैसे मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्धि करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। ओए होए, जैसे कहते हैं इसका अर्थ यो है वैसे साधारण सा, हे मनुष्य जैसे परमेश्वर, हे मनुष्य जैसे देहधारी परमात्मा, आप जैसे पहले आते रहे हो और एक मनुष्य की तरह काम करके अपना निर्वाह करते हो, मनुष्य जैसा की तरह प्रयत्न करके अपना काम करके निर्वाह भी करते हो और हमें तत्व ज्ञान भी प्रचार करते हो, उसी तरह एक बार फिर आओ और हमें उस अपने पूर्व के स्थान जहां से हम आए थे वहां पहुंचाओ। जैसे परमात्मा ने जुलाहे का एक काम किया, कपड़ा बुनते थे और परमात्मा थे, यही वेद प्रयत्न कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखो अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। प्रियम, हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए यानी उसी प्रकार आइयो तथा अपने भगत को प्राप्त की और शरण में लीजिए। इस काल के लोक से बहिर्षि माने बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को अर्थात अपने भगत को देवम देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थाई रूप से प्रतिष्ठित कीजिए यानी वहीं जहां से हम बिछुड़कर आए हैं वहां पर हमें भेज दीजिए। ये अन्य भी प्रमाण इसी प्रकार है। अब यहां इस दयानंद के द्वारा किया वाडंगानुवाद और देखो, ये फिर यकीन होगा थोड़ा थोड़ा आपको। ये देखो अडंगानुवाद दयानंद सरस्वती का, ये वही है, ये आगे देखेंगे, ये वाला अग्नि मनुष्यवत अग्नि, हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि, विद्याओं के सर्वत्र व्याप्त सभाध्यक्ष, आप अग्नि को सभाध्यक्ष लिख रहे हैं, मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान, आने जाना नहीं, मनुष्य के समान, शरीर के व्याप्त प्राण वायु के सदृश, राज्य कर्म में व्याप्त पुरुष के तुल्य, जैसे पुरुष मनुष्य यानी पुरुष यत्न के साथ कार्य को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुरुष यत्न के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, वैसे ही परमात्मा आप भी उसी की तरह काम करते हो और आप साधारण मनुष्य की तरह आकर के कार्य करते हो। अब की बार फिर आओ और हमें आप अपने उस भगत को वहां पहुंचा देते हो जहां पर वो पवित्र आत्मा रहती है, सतलोक के अंदर वहां भेज देते हो। इसका सीधा सा निर्णय, क्योंकि अपुण्यात्मा जो परमात्मा ने सीधा ज्ञान हमें दिया है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है सिंपल लैंग्वेज में। उसको यदि हम अकेले उसको बतावें तो कोई किसी के कान पर जू नहीं रेंगे, और इन वेदों के साथ तुलना करके बताओगे तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। अरे सचमुच तो भाई इससे भी अनुवादकर्ताओं ने भले ही उसको गोलमोल किया फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। अब पुण्यात्माओं, तीन पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य के सदृश्य है, उस शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो नर आकार है, मनुष्य जैसा है। और चौथा पवित्र धर्म सिख धर्म है, उसमें पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर अंकित है गुरु नानक देव जी की महला पहला की वाणी। उसमें क्या लिखा है, आंखों देखा परमात्मा को सचखंड में, क्योंकि परमेश्वर बेई नदी पर मिले थे गुरु नानक देव जी को, और नदी में गोता लगाकर डूबने का बहाना करके उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। पूरे ब्रह्मंडों से पूरी सती थी परिचित कराके, और कहा था कि मैं बनारस में एक दुलाहे की भूमिका करता हूं, एक धानक का काम करता हूं, वहां आ जाना प्यारी आत्मा, तुझे सतनाम और सारनाम दूंगा। अब उसी दिन से नौकरी त्याग करके गुरु नानक देव जी ने पहली उदासी पहली यात्रा बनारस की थी, और वहां बनारस में जाकर देखा था वही भगवान जो सचखंड में देखा था वही एक धानक का काम कर रहा है। उसने कहा था, फाई सूरत मनु की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रे। आसपास के लोगों को कह रहा कि ये बैठा भगवान, ये दानक रूप में, ये जुलाहे रूप में बैठा मालिक, ये है वो परमात्मा। अब जहां वो परमात्मा रहा करते वहां के वो जुलाहे उस कबीर परमात्मा को तो एक सिंपल मैन समझते थे, उनका वह बात जचैना अकी पंजाब का पंजाबी आकर एक इस नीरू के बेटे ने भगवान बताओ इसकी बुद्धि खराब होगी। अब वो मानने नीरू आंखों देख रहे गुरु नानक देव। तो पुण्यात्माओं, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, उसमें लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐ प्रवर्दिकार। हक्का कबीर माने सत कबीर, हे सत कबीर तू ही निर्विकार परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचन वाला है। ये तो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने और आंखों देखा गुरु नानक देव जी ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब आंखों देखे गवाह आपको और क्लियर कर देंगे आदरणीय संत गरीबदास जी, आदरणीय संत गीसा दास जी, आदरणीय संत दादू दास जी, आदरणीय संत मलुक दास जी, आदरणीय संत धर्मदास जी और आदरणीय रामानंद महर्षि रामानंद जी। ये आंखों देखा बताएंगे कि उन्होंने बताया है कि संत गरीबदास जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का उसको एक रति नहीं भार, उस मालिक इतनी शक्तिशाली है वो कबीर भगवान। और सतगुरु, सतगुरु और पुरुष दोनों शब्द लगाए हैं संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर के साथ। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत और पुरुष माने परमात्मा। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव, कबीर साहब, हम कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को जगाने के लिए आते हैं। अपने मूल स्थान सत्यलोक की जानकारी देने आते हैं। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आकर के तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, परंतु काल के द्वारा दिए गए भ्रमित ज्ञान के आधार पर हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो साधनाएं भगत जन, ऋषि जन, साधक करते थे उनसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म काल स्वयं कह रहा है कि जो मेरा वास्तविक रूप है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का मालिक राम स्वामी प्रभु ये ज्योति निरंजन काल है और सभी ऋषिजन देवता ये सभी साधक इस ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहे, उन्होंने साधना का कौन सा सहयोग दिया, कौन सा साधन अपनाया, जैसा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा ओम नाम है, 15 और 17 में, और वो परमात्मा ऊपर गुप्त है, वो परोक्ष है, पूर्ण ब्रह्म, और मेरा ओम नाम है। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान करके ओम नाम का स्मरण करो। ये तो है वेदों में लिखा है, यही प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है और ब्रह्म ने इस ज्योति निरंजन काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके यु गीता जी का ज्ञान बताया। ये कह रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुशमरण ये प्रयाति तजनदेहम स याति परमाम गति। मेरा केवल एक अक्षर ओम है उच्चारण करके सिमरण करने का, और इसको अंतिम श्वास तक जो सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। एक तो इन साधकों ने, ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि ओम नाम ही एक जाप है। वेदों से ओम नाम का जाप उन्होंने साधना के लिए सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया। दूसरी तरफ ये काल भगवान अपना भ्रमित ज्ञान भी साथ साथ प्रचार करता रहता है, करवाता रहता है, जिसमें ब्रह्मा जी कमल के फूल पर सचेत हुए, क्योंकि इनको अचेत करके रखा जाता है, ये युवा अवस्था में थे और ये कमल के फूल पर विराजमान होकर के इसने देखा सब और जल ही जल है, तो ब्रह्मा जी ने आप ही बताई कि फिर मैं नीचे उतरा, कहीं पर भी जल का और छोर मुझे नहीं मिला, तब मैं कमल के फूल पर फिर विराजमान हो गया, तो मैंने सोचा मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कैसे उत्पन्न कर दिया, यहां सारी चारों ओर जल ही जल है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी कहते मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ये तप करने का जो आदेश है ये है ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, काल का। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, पवित्र वेदों और पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं है। और जो साधना पवित्र वेदों में और पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं है वो साधना मनमाना आचरण है। जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, न कोई सिद्धि होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। अब ब्रह्मा जी ने तप करने का जो आदेश मान लिया ये सोचकर कि ये परमात्मा की आकाशवाणी है, प्रभु का आदेश है, ये पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं था, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन का जाल था। तो इसी आधार से ऋषियों ने और देवताओं ने अब ये दोनों खिचड़ी ज्ञान मिला लिया, ओम नाम का जाप भी करने लगे, फिर हठ योग करके तप तपस्या करने लगे, समाधिस्थ होने लगे। अब समाधि दशा में जैसे ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, साधना की, तो वही काल भगवान विष्णु जी के रूप में उनको समाधि दशा में प्रकट हो गए। जैसे आंखें बंद करके और समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये जो विष्णु है, सतगुण विष्णु, यही परमात्मा है, समाधि में मुझे यही दर्शन, इसी ने दर्शन दिए। और जब विष्णु साधना करता है तो उसको ब्रह्मा के रूप में और कभी शिव के रूप में ये काल दर्शन दे देता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, ये मेरे दर्शन नहीं कर सकेंगे, मेरे यथार्थ रूप को नहीं देख सकते, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब भगवान शिव समाधिस्थ होते हैं तो उनको विष्णु जी के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में समाधि दशा में दर्शन दे देता है। अब जिस कारण से ये सोच लेते हैं कि ये शंकर भगवान सोच लेते हैं कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं, और कभी सोच लेते हैं ये ब्रह्मा ही सृष्टि रचनहार हैं, ये कुल मालिक हैं। अन्य ऋषिजन, अन्य साधकों ने भी ऐसे साधना की, समाधि दशा में उनको किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने ब्रह्मा जी का डडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कुल मालिक है, आदि आदि। और किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, तो विष्णु जी रूप में जिसको दर्शन हुए तो वो उसने विष्णु जी के गुण गाए कि ये विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है, यही कुल मालिक है। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए, और जिसको शिव रूप में दर्शन दिए तो उसने शिव जी को ही पूर्ण परमात्मा कह करके व्याख्यान कर दिया। इसी कारण से फिर ये पुराणों की रचना होगी, और यही कारण था ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई करने का। अब विष्णु जी के रूप में इस काल ने जिनको दर्शन दिए उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, हमने खूब जान लिया, हमने समाधि में देख लिया है। इस बात से विष्णु जी फूल का कुप्पा हो गए, अकबस तू ही है भगवान और तेरी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। इस काल भगवान ने जिन साधकों को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गा दिए, उनके पास जाकर के उनकी महिमा स्तुति की कि आप ही वास्तव में सृष्टि रचनहार हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप ही से विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है, आप जगत के सृष्टा हो। इस बात से ब्रह्मा जी फूल का को पाओगे कि मैं ही सृष्टि जगत पिता हूं, सबका मालिक हूं। एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान थे, साथ में लक्ष्मी जी भी थी और भी बहुत से अनुचर उनके देवगण खड़े थे, बैठे थे। अब ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे तो विष्णु के मन में यह था कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है और मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया, विष्णु जी ने ब्रह्मा का की आवभगत नहीं की, ये सोच करके ये मेरा पुत्र है, मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में यह उत्पन्न हुआ। और उधर से ब्रह्मा के मन में यह था कि विष्णु मेरा ही पुत्र है, मैं जगत का स्वामी हूं, क्योंकि अन्य ऋषियों महर्षियों ने यही गुण गा रखे थे। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि विष्णु ने तेरा सत्कार नहीं किया तो कहने लगा कि उठ बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं और अपने बाप को देखकर तू गर्व करता है, तेरी बुद्धि ठिकाने लेनी पड़ेगी। उधर से भगवान विष्णु कहने लगा कि आजा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब इस बात पर कि मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। आपस में हथियार उठा लिए, लड़ाई प्रारंभ होगी, बहुत सी सेना भी मर गई। तो फिर इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, इन दोनों के बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक प्रकाश में एक खंभा खड़ा कर दिया बीच में, बहुत ही लंबा चौड़ा। तो इन दोनों भगवानों ने लड़ना तो बंद कर दिया, उस स्तंभ की जानकारी में लग गए कि ये कितना लंबा चौड़ा है, किधर से आया है, किधर इसका ओर छोर है। एक जना ऊपर को चला गया, एक जना नीचे को, वापस आ गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका छोर पा लिया है, विष्णु जी ने सत्य बता दिया कि मुझे इसका और छोर नहीं मिला। तो उस समय ये काल भगवान अपने सदा शिव रूप में इनके पास प्रकट हो गया और फिर इनको बताया कि तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, स्वामी नहीं हो। अब देखिएगा प्रमाण, ये देखिएगा श्री शिव पुराण, श्री महाशिव पुराण हिंदी टीका सहित श्री शिव महापुराण, इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज प्रकाशन, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। अब इसमें देखिएगा विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 17 पे, यह है शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9। पहले यहां से शुरू करेंगे जहां इनका युद्ध प्रारंभ हुआ, ये पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहां से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। स्वामी माने तुम्हारा मालिक पिता। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्राश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर से तो गुस्सा हो गए, ऊपर परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, क्यों वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको माया के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हंस और गरुड़ वाहन करके सचित हो ये दोनों युद्ध देव युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो इन देवताओं की। अब देखो पुण्यात्माओं, ये अपने सदग्रंथ, अपने भगवान जिनको हम सर्वस्वा और भगवान मान्या करते थे, ये बालका की तरह लड़ाई कर रहे हैं, जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा करें। एक कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, दोनों मुक्का वो शीघ्रवान पकड़ ले और फिर अध्यापक के पास जाते हैं। अध्यापक पूछता, भाई क्यों, क्या झगड़ा तुम्हारा? वो नो कह, जी यू नो बोला मैं तेरा बाप। वो नो कह, ना जी यू पहले यू बोला मैं तेरा बाप। तो ये तो हमारे भगवान थे जी, नाम सुप्रीम पावर माना थे। अरे इन देवताओं के लक्षण देख लो, और तेरा गजब ही हो। अब दो ग्रुपों की लड़ाई होने जा रही है, तो बुद्धिमान लोग उनका बीच बचाव करें। और ये नौके ऊपर तो फूल बरसाओ देवता, नौके है शाबाश हो जाओ करड़े लड़ो, ऐ थरा गज भैया, ये तुम्हारे देवताओं के लक्षण है। तो यहां परमात्मा से ही कहे, निरंजन धन तेरा दरबार जा, तनक नहीं न्याय विचार, कितने भी कोई विचारवान बात नहीं इस जगत में। अब क्या होता है कि दोनों लड़ रहे हैं, आपको बता दिया, ये तकरीबन यही है बस। अब मोटा हा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, ये जीवनी बता रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की, कि ये परमात्मा नहीं है। और हम इनको ईश मान रहे थे, मालिक मान रहे थे, भगवान मानते थे। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर आ गए हम। अब क्या होता है कि अध्याय 9, अब यहां से पढ़ेंगे हम, अपने काम की बातें लेंगे। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने ये शिव आके वहां प्रकट हो गया, काल शिव रूप में प्रकट हो गया। उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। अब वो काल कहता है, ब्रह्म बोलता है शिव रूप में, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, जो इसने सतम रूप खड़ा किया बीच में, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, जो दिखाई नहीं देता, जिस रूप में गुप्त रहता उसको तो कहता वो निसकल है, निराकार है, और इस रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अब तुमने अपने आप को स्वामी भगवान मान लिया ब्रह्मा और विष्णु, यह बड़ा ही काल कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब आगे क्या कहता है, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि आदिक अनुग्रह आदिक ही मेरा करते हैं, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्म केशव, क्षमता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं, आदि आदि। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे देखो 18 पे, यहां देखिएगा, ये काल कह रहा है, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। अब देखो क्या कहा है, जैसा कि आपको बताया था कि काल ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर कहा सृष्टि करो, फिर इसके बाद फिर विष्णु ने तप किया कोई 1000 वर्ष तक, फिर शिव ने तप किया, तो इन सब को इन्हीं की तपस्या के प्रतिफल में इनको यहां के एक एक विभाग प्रदान कर दिए। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो तुमने कृत्य जो डिपार्टमेंट जो विभाग आपने प्राप्त किए हैं, रजोगुण विभाग ब्रह्मा ने और सतोगुण विभाग विष्णु ने और तमोगुण विभाग महेश ने, शंकर ने, शिव ने, कहते ये मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है, लेकिन ये तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे सुकर सवानम। अब काल ने तो यहां अपना उल्लू सीधा करना था, इन जीवों को भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान नहीं देना चाहता, ये चाहता है कि यहां ये तपस्या आदि करें, इससे इनको राज्य प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त करके ये नरे खोटे कर्म करें और फिर 84 लाख योनियों में इनके इतने पाप इकट्ठे हो जाएं कि फिर कई जन्मों तक ये 84 लाख योनियों में भ्रमित रहें। तो काल तो चाहता है कि इस प्रत्येक प्राणी को इतना ज्ञान भर दूं, इतना ज्ञान दे दूं कि ये परमात्मा से दूर हो जाएं। और परमेश्वर का प्रयत्न ये रहा है कि मैं अपनी स्थिति को यहां बनाए रखूं और ये प्राणी नास्तिक होने से बचे रहें। वो परमात्मा इसलिए समय समय पर आकर के साधु रूप, संत रूप बना करके, गुरु रूप बना करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपने सच्च अपनी वास्तविकता से परिचित कराते हैं, फिर उनमें भी सिद्धियां दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, फिर उनसे भी ऐसे कुछ ईश्वरीय शक्ति प्रकट होने लग जाती है जिससे जगत फिर परमात्मा को चाहने लग जाता है। तो काल का ये जाल परमात्मा ने आकर के हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है, समझाया है। अब यहां देखो क्या कहते हैं कि ये तुमने जो तप ये दो विभाग प्राप्त किए हैं ये अपनी तपस्या से ही किए हैं। ये देखिएगा इसी शिवपुराण में रुद्र संहिता, ये शिवपुराण पृष्ठ 17 पुराण वही है, ये विद्वेश्वर संहिता के बाद रुद्र संहिता अध्याय 6 का पृष्ठ नंबर 17 पे यहां स्पष्ट किया है। तब शिव विष्णु ने शिव को नमस्कार कर बड़ा तप किया, शक्ति से ही परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए, ये काल आदेश दे जाता है और अपने लोक में गए। इधर विष्णु जी ने ये ब्रह्मा को आदेश दिया, इधर विष्णु जी ने 12 सहस्र दिव्यवर्ष तक तपस्या की, ओहो, इधर विष्णु जी ने 12,000 दिव्यवर्ष तक तपस्या की, परंतु अपना अभिलिष्ट कल्याणकारी शंकर का दर्शन नहीं पाया। ओए हाय, अपुण्य आत्मा, अब क्या बताना चाहता था ये दास कि जो साधना इन ऋषियों ने देवताओं ने की परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती उस साधना से, अब ये काल ब्रह्मा विष्णु को क्या समझा रहा है ये देखिएगा। अब हम आगे हैं विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 पृष्ठ 18 पे, वो रुद्र संहिता थी जो तपस्या के विषय में आपको जानकारी दी। ये काल कहता है, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे को दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए थे, रुद्र और महेश ने उन्हें भुलाया नहीं। अपुण्यात्मा, इन भगवानों की जीवनी में ही आपको बहुत कुछ ज्ञान हुआ, जो परमात्मा कबीर जी पहले ही बताया करते थे। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। तीन गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी की साधना में ये सब भूले पड़े हैं, और सतनाम निज नाम के बिना तुम्हारी कैसे कल्याण होगा, तुम पार कैसे होगे। अब जो सिद्ध करना चाहता था ये दास के ब्रह्मा और विष्णु और शिव, इनसे अलग एक और शक्ति है जो काल है, और वही जैसे इस शिव प्राण के रचयिता ने जब अपनी साधना की तो उस काल भगवान ने इसको शिव दर्शन रूप में दर्शन दिए। तो शिव पुराण के लेखक ने भगवान शिव को पूर्ण परमात्मा मान लिया, और साथ में फिर यह भी लिखना पड़ा कि वो, क्योंकि जो आदेश जो वो बोला गया था शिव के द्वारा, उसको जो का तो लिपिबद्ध करना पड़ा। किसने? व्यास जी ने। वेद व्यास जी के कुछ तो अपने विचार हैं पुराणों में, अन्यथा अधिकतर उसने वही लिखा है जो किसी की वार्ता हुई है, जैसी भी हुई है। तो इसमें यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और शिव महेश, इनसे अलग एक और शक्ति है जो यहां शिव रूप में प्रकट हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ उस समय जो लीला की, उसने शिव रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही कहीं और किसी की का ऐसे हो जाता है तो वहां किसी को शिव रूप में, विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु को ही परमात्मा मान बैठते हैं। किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा को परमात्मा मान बैठते हैं। लेकिन ये काल अलग है जो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप धारण कर लेता है, मिलते जुलते रूप होते हैं इनके। और दूसरा ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अपुण्यात्मा, ये सत्संग सथल ऐसा सामूहिक सथल है कि इसमें पहली कक्षा के बच्चे भी आए होंगे जो आज ही नाम लेने आए हैं, कुछ ज्ञान समझा है। अब वो ये सोचेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, इस सतलोक आश्रम में यही पढ़ाया जाता है, सदग्रंथों के गुड़ रहस्य रूबरू कराए जाते हैं पुण्यात्माओं को, और तब इनको विश्वास हो जाता है। इसी कारण से दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो रही है भक्तों की वृद्धि में। अब बुद्धिमान समाज है, आंखों देखकर प्रमाणों को तुरंत भागा आता है, और साथ में 10-5 को और लाता है अपने मित्रों को, परिवारजनों को, कि आ जाओ लुट गए, रह गए पीछे पछताओगे फिर। अब देखिएगा ये श्री देवी प्राण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देवी पुराण केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पर, अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए, तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, तुम हो, तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुण्यात्मा इसे यह भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं और इन्हीं की जीवनी में लिखा है। दास केवल पढ़कर सुना रहा है। ये काम तो आज तक हजारों वर्ष पहले हमारे धार्मिक गुरुओं ने करना चाहिए था, जो दास की ड्यूटी लाई। अब तो वो गुरु नहीं थे, वो काल के दूत थे जो हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके उल्टी पढ़ाई पढ़ा गए, आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान दे गए और 10 रुपए के नोट को 1000 रुपए का बताते रहे। अब उनकी कीमत देखी, उन पर लिखी हुई, तो 1000 रुपए के नोट नहीं थे। वैसे इतनी सी बात है। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता जी, वही पवित्र गीता जी जो 5500 वर्ष पहले, लगभग 5500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और काल द्वारा बोली गई थी, ब्रह्म द्वारा श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और उसको अभी तक पूरा हिंदू समाज रट्टे लगा रहा था, बड़ी उसको पढ़ते थे, नित पाठ करते थे और बड़ा शिरोधार्य मानते थे कि बहुत अच्छा उत्तम ग्रंथ है, ग्रंथ उत्तम है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसका कति ज्ञान नहीं था। अब इसमें हमने पढ़कर देखा तो हमें पता लगा कि किसकी क्या स्थिति है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि हे अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी जिसको पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान, पूर्ण परमात्मा की महिमा से जो परिचित हो जाएगा, उस साधक की ऐसी स्थिति हो जाएगी। अपुण्यात्माओं, कितना कितना निर्मल जो है ना उदाहरण दिया है, सटीक उदाहरण है कि जैसे पहले पुराने समय में 10-20 परिवार किसी तालाब का आश्रय लेकर उस पर आश्रित हो जाते थे, उसी से सिंचाई करते थे, ऐसे मेहनत बहुत करते थे पहले, ऐसे हाथों